तो जब सितारे निकल आते हैं और परिंदे सारे सोने जाते हैं, कर तूने है वाणी नन्हे बच्चों की, रात भर करने पागल सब बीमारों की, हमने है जो पड़े देवा और यकीन,
अदाब इस प्यारे साथियों, मुखलिस दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समात फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज़ को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समात फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए जो कि है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से, प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवीए उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज जुम्मा है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकेंगे नगमा सहर और रहनुमा सितारे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की जेर निगरानी तैयार किए गए हैं। तो आइए समाप्त फरमाइए ये प्रोग्राम। हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 19वां बाब 31 से 37 आयत तक। चूंकि तहैया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सब्बत को सलीब पर ना रहें, क्योंकि सब्बत का वो दिन खास था। इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर फूर खून और पानी बह निकला, और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि वो उस पर नजर करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आलमगीर क्लीसिया आज यीशु के पाक दिल की ईद मना रही है। क्लीसिया इस बात पर नहायत संजीदगी और पुख्तगी से ईमान रखती है कि खुदावन यीशु मसीह का पाक दिल मोहब्बत, रहम और शफकत से भरा हुआ है। अगर हम बड़े गौर और ध्यान से यीशु के पाक दिल की तस्वीर को देखें, तो हमें इसमें चंद अलामत नजर आती हैं। यीशु के पाक दिल के ऊपर सलीब, उसके گرد کانٹوں کا تاج، زخمی دل جو اس کی موت اور دکھوں کی عکاسی کہتا ہے۔ الہی دل کے اندر جلتا ہوا شعلہ انسانیت کے لیے یسوع کی بے انتہا اور لازوال محبت کو بیان کرتا ہے، جو اس نے صلیب پر قربان ہو کر ہم پر آشکارا کی۔ یسوع کے پاک دل کی عید کے موقع پر اس کے دکھوں کو نمایاں انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے چھیدے ہوئے دل سے خون اور پانی بہ نکلا، تاکہ اس سے کلیسیا کے لیے ساکرامنٹوں کے چشمے جاری ہوں۔ آئیں یسوع کے پاک دل کی عید مناتے ہوئے اس کے پاک دل کی عقیدت اور تعظیم میں آگے بڑھیں، یسوع کے زخمی دل پر دھیان و گیان کریں اور اس سے تقویت پائیں۔ خداوند سے دعا کریں کہ وہ اپنے پاک دل کی برکات ہم پر نازل فرمائے، تاکہ دنیا سے تمام طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو اور ہر بشر شفا اور زندگی، خوشی اور شادمانی کا تجربہ کر سکے۔ آپ سب کو یسوع کے پاک دل کی عید مبارک ہو۔
اس قادر مطلق کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پروگرام کا آغاز اس امید کے ساتھ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، محسنوں اور قدردانوں، یہ ریڈیو ویریٹاس ایشیا کی اردو سروس ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان ثنا جارج۔ پیش خدمت ہے پروگرام رہنما ستارے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے ننھے ساتھیوں کے لیے لے کر آئے ہیں ایک خوبصورت سی نظم، ایک دلچسپ سی کہانی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیں گے آپ کو بہت ہی اہم معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ دیں گے آپ کی ذہانت کا بھی امتحان۔ تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک پیاری سی کہانی کے ساتھ جس کا عنوان ہے مینا کی مینا۔ مینا ایک بہت ہی پیاری سی بچی تھی اور اس کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ اسے جانوروں سے بہت پیار تھا اور خاص طور پر پرندے تو اس کے بہت ہی زیادہ پسندیدہ تھے۔ وہ اکثر اپنی چھت پر پرندوں کے لیے دانا رکھتی، پانی رکھتی، کیونکہ اس کی امی نے اس کو بتایا تھا کہ پرندوں کو دانا ڈالنا، ان کو پانی پلانا یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ اور اس کی امی کہتی تھی کہ ابھی گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں خاص طور پر ایسا کیا کرو کہ چھت پہ جایا کرو اور ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی رکھ کر آیا کرو، کیونکہ اس سے اگر کسی پرندے کی جان بچ جاتی ہے تو اس سے بڑی نیکی اور اس سے بڑا اچھا کام اور کیا ہوگا۔ اور وہ اپنی امی کی اس نصیحت پر بہت اچھے سے عمل کرتی تھی اور روزانہ ہی ایسا کرتی تھی کہ پانی کا پیالہ بھرنا اور چھت پہ رکھ کے آتی تھی۔ لیکن اس کی ایک خواہش تھی، خواہش اس کی یہ تھی کہ اس کو پرندے اپنے گھر پہ رکھنے تھے، جبکہ اس کی امی کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی، کیونکہ اس کی امی یہ کہتی تھی کہ پرندوں کو یا جانوروں کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، جبکہ مینا کی خواہش تھی کہ وہ بہت سے رنگ برنگے طوطے اور بہت زیادہ چڑیا جو ہیں ان کو اپنے گھر لے آئے۔ اب مینا اپنے ابو کی لاڈلی تھی اور اس کے ابو اس کی ہر فرمائش بھی پوری کرتے تھے۔ مینا نے اپنے ابو سے کہا کہ مجھے رنگ برنگی چڑیاں اور کچھ طوطے لا کر دیں، میں انہیں اپنے صحن میں پیارے سے پنجرے میں رکھوں گی۔ اس کے ابو نے بڑے ہی پیار سے بتایا کہ بیٹا، پرندے جو ہیں وہ آزاد ہی اچھے لگتے ہیں، انہیں قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم انہیں قید کر کے رکھتے ہیں تو یہ اداس ہو جاتے ہیں، یہ تو ہواؤں میں، کھلی فضاؤں میں اڑتے اور درختوں پر چہچہاتے ہی اچھے لگتے ہیں، انہی سے تو ہمارا جو ماحول ہے وہ خوشگوار اور خوبصورت لگتا ہے، اور پنجرا کتنا ہی پیارا، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ان کی آزادی کا نمل بدل تو نہیں ہو سکتا نا، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ لیکن ابو جان، میں تو انہیں بہت پیار سے رکھوں گی، ان کے کھانے پینے کا دھیان بھی رکھوں گی۔ مینا بات سمجھ چکی تھی لیکن اس کے باوجود ضد کر رہی تھی، لیکن اس کے ابو نے اس کو سمجھاتے ہوئے بولا کہ بیٹا، یہ گناہ ہے، خدا اس سے ناراض ہوگا کہ ہم پرندوں کو قید کر کے پنجرے میں رکھیں۔ اور مینا اس بات سے تھوڑی سی ناراض تھی، نہ خوش تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ اسکول سے چھٹی کے بعد جب گھر آئی ہے تو اپنے اس نے لان میں شام کے وقت کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت سے نیم کے درخت کے نیچے ایک پرندہ ہے، ایک مینا تھی جو کہ زخمی تھی اور ایک کراہ رہی تھی درد سے۔ اس نے جلدی سے مینا کو اٹھایا اور بھاگ کر اپنی امی کے پاس گئی اور بولی کہ امی جان، یہ دیکھیں، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ تو زخمی ہے اور اس کا خون بھی نکل رہا ہے۔ امی کہنے لگی، بیٹا اس کو اندر لے آؤ، یہ زخمی ہے، باہر اس کو کوئی بلی وغیرہ کھا جائے گی، میں اس کے زخم پر مرہم بھی لگا دیتی ہوں۔ انہوں نے جلدی سے مینا کو دوا لگائی اور ایک جوتے کے ڈبے میں تھوڑی سی روئی بچھا کر اسے وہاں رکھ دیا۔ اب تو مینا بھی آرام سے بیٹھ گئی اور شاید اسے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ انسان اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مینا نے کیا کیا کہ جلدی سے ایک پیالے میں تھوڑے سے ابلے ہوئے چاول اور باجرا ڈال دیا۔ مینا بھوکی بھی تھی اس لیے وہ جلدی سے باجرا کھانے لگی۔ پھر شام کے وقت اس کی امی نے اس ڈبے کو ایک جالی سے ڈھانپ دیا۔ شام کے وقت دوبارہ اسے مرہم لگائی اور جب اس کے ابو گھر آئے تو مینا نے بہت ہی خوشی سے بتایا کہ دیکھیے ابو، آپ مجھے کہتے تھے کہ پرندوں کو گھر پہ رکھنا اچھی بات نہیں ہوتی، پرندوں کو آزاد ہی رہنا چاہیے، تو دیکھیں خدا نے گھر بیٹھے بٹھائے کیسے مجھے پیاری سی مینا دے دی۔ مینا کے ابا نے کہا کہ ابھی یہ زخمی ہے، اسی لیے آرام سے بیٹھ گئی ہے، آپ دیکھنا ٹھیک ہوتے ہی اڑنے کی کوشش کرے گی، پرندوں کی تو فطرت میں اڑنا ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ یہاں نہیں رہے گی، آپ مجھے ایک پنجرا لا کر دیں، میں اس کو پالوں گی، یہاں بہت خوش رہے گی۔ मीना लाड से कहने लगी, अब्बा जान ने इसे समझाया कि ये बुरी बात है, आपने इस परिंदे की इतनी केयर की है, इसका इतना ख्याल रखा है और खुदा की नजर में ये बहुत अच्छा अमल है, लेकिन अगर आप इसको कैद कर लो कि तो आपकी सारी नेकी जाया हो जाएगी। मीना ने कहा कि नहीं अब्बा, मैं इसको अपने पास ही रखूंगी क्योंकि ये खुदा की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा बनकर मेरे पास आई है। उसके अब्बा ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीना का इरादा मुस्तकिल तौर पर उसको अपने पास रखने का था। उसके अब्बा ने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी पिंजरा लाकर नहीं दूंगा, लेकिन अभी इसको पहले ठीक हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि मीना के पर जो हैं वो ठीक नहीं हुए थे अभी, और वो उड़ने के लिए बेताब थी लेकिन फड़फड़ाकर रह जाती थी क्योंकि अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी। इसके साथ साथ मैना मीना से बहुत मानूस भी हो गई थी और इसके हाथ से बाजरा वगैरह भी खा लेती थी। रफ्ता रफ्ता क्या हुआ कि अब मैना का जख्म भरता गया और उसने कमरे में ही इधर उधर उड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर मीना को खुशी तो बहुत हुई कि उसकी ख्याल रखने की वजह से या उसके केयर करने की वजह से मैना बिल्कुल ठीक हो रही है, और इसी डर से कि ये कहीं उड़ ना जाए उसने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। और अम्मी ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि बेटा इसको जाने दो, अब ये ठीक है, कि मीना ने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी प्लीज इसे 2-3 दिन और मेरे पास रहने दें। अम्मी उसकी बात मान गईं, लेकिन हुआ कुछ यूं कि मैना जब से ठीक हुई थी वो हर वक्त ही बेचैन रहती थी, कमरे में उड़ान भर भर के चक्कर लगाती रहती, कभी दरवाजे की तरफ परवाज करती, कभी खिड़की के जानिब उड़ती, और इसी बेचैनी की वजह से वो ठीक से कुछ खा भी नहीं पा रही थी। जो भी चावल या बाजरा इसको दिया गया था वो वैसे का वैसे ही रखा था। और ये बातें और ये सारी सिचुएशन अब देखकर मीना परेशान हो रही थी कि इस तरह से तो मैना मर जाएगी और अब तो वो उड़ती भी कम कम ही है। ये इतवार का दिन था, उस दिन मीना को स्कूल से छुट्टी भी थी और वो खेलने की कोशिश कर रही थी कि मैना के साथ खेले, लेकिन क्या हुआ कि मैना जो है वो तो बिल्कुल भी खेलने के मूड में नहीं थी, वो एक नाराज सी लग रही थी। और ऐसे में उसे मीना को अपने वालदैन की बात याद आई कि परिंदे जो हैं वो उड़ने के लिए ही होते हैं और ये मैना भी जब ठीक होगी तो ये उड़ जाएगी, और अगर तुम उसे कैद करके रखोगी तो ये बुरी बात होगी, खुदा की नजर में भी और इंसान होते हुए भी ये बुरी बात होगी कि तुम इसे कैद करके रखो। मीना ने बोला कि अब मैं इसे आजाद कर दूंगी, मैं इसे और ज्यादा परेशानी में नहीं देख सकती, और उसने ये भी कहा कि अब मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि आजादी कितनी बड़ी नेमत होती है। फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है मैं अपने कमरे की खिड़की खोलती हूँ, अगर तो ये उड़ गई तो ठीक है, वरना मैं इसको हमेशा के लिए अपने पास ही रख लूंगी। अब जैसे ही मीना ने खिड़की का दरवाजा खोला, मैना तो ऐसे एकदम से उड़ गई और खुशी से अपनी आवाजें निकाल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो आजादी के गीत गा रही हो या ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो आजाद होने पर खुदा का शुक्र अदा कर रही हो, और जल्दी से बाहर निकलते ही दीवार पर बैठ गई और उसके बाद उड़ गई। मैना की खुशी भरी आवाजें सुनकर मीना खुद भी खुश हो गई और अपने आप से गुफ्तगू करके कहने लगी कि वाह क्या अच्छा फैसला किया है मैंने कि मैंने इस परिंदे को आजाद कर दिया, और उसके बाद वो इत्मीनान से अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। प्यारे बच्चों, हम अक्सर इंसान होते हुए ऐसा करते हैं कि हमें कोई परिंदा बहुत अच्छा लगने लगता है, कोई जानवर बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें कैद करके रख लें, क्योंकि कैद उन्हें किया जाता है जिनसे हमें मोहब्बत नहीं होती। तो हम तो मोहब्बत करते हैं परिंदों से या जानवरों से, तो फिर उन्हें कैद नहीं करना चाहिए। और अगर आप में से भी किसी बच्चे ने ऐसे ही किसी अपने पसंदीदा जानवर को या परिंदे को कैद किया हुआ है तो उसे छोड़ दें, क्योंकि आजादी बहुत बड़ी नेमत होती है, खा वो कोई इंसान हो या जानवर हो, वो आजाद होकर ही खुश रह सकता है। प्यारे बच्चों, आप अक्सर पौधों के पास जाते हैं और खास तौर पर रात के वक्त जब आप जाते हैं तो आपने ये चीज महसूस की होगी और बाज़ुकात इसका तजर्बा भी किया होगा कि आपकी जो माएं होती हैं वो कहती हैं कि नहीं नहीं पौधों के पास मत जाओ, पौधे सोते हैं इस टाइम पे या पौधे सो रहे हैं, इसलिए इन्हें हाथ मत लगाओ। तो आज हम इसी बात पे बात करते हैं कि क्या पौधे सच में सोते हैं, क्या पौधों को भी नींद आती है। पौधों की आंख नहीं होती है जिससे वो बंद करें, पौधों के मसल्स नहीं होते जिससे कि वो उनको सुकून पहुंचाएं, लेकिन जिस तरह हमें इंसान होते हुए नींद की जरूरत होती है, इसी तरह पौधों को भी रिलैक्स करने की जरूरत होती है। जिस तरह हम रात को सोते हैं, इसी तरह पौधे भी रात को सोते हैं। इसीलिए हमारी अम्मियां कहती हैं कि पौधों के पास रात के वक्त नहीं जाना चाहिए। जब हम सो रहे होते हैं और हमें कोई डिस्टर्ब करता है तो हमें गुस्सा आता है और हम अपने गुस्से का इजहार भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह पौधों के पास भी रात के वक्त नहीं जाना चाहिए जबकि वो आराम कर रहे हों। पौधों के लिए सूरज की पहली किरण काम का पैगाम लाती है। हम तो कभी देर से उठते हैं और किसी वक्त इतनी सुस्ती और इतनी काहली महसूस करते हैं कि तमाम दिन कोई काम नहीं करते और सारा सारा दिन भी हम सोए रहते हैं, लेकिन पौधे इस किस्म की गलती कभी नहीं करते। वो तमाम दिन काम करते हैं और उनका काम ये है कि वो सूरज की शुआओं की मदद से अपनी खुराक तैयार करें। आप में से बहुत सारे बच्चे जो बड़ी बड़ी क्लासेस में हैं, उन्हें तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, इस चीज का अंदाजा होगा कि पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी में अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। और पौधों की खुराक में जमीन के नमक और पानी भी शामिल होते हैं, लेकिन जब तक उन्हें धूप ना मिले वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। जब सूरज डूब जाता है तो पौधों के लिए कोई काम नहीं रहता, वो सो जाते हैं और उनका काम बंद हो जाता है। उनकी नशोनुमा रुक जाती है और वो सूरज के निकलने का इंतजार करते हैं ताकि अपना काम दोबारा से शुरू कर सकें। सूरज की रोशनी की मदद से खुराक तैयार करने का काम ज्यादातर पत्तियां करती हैं। इसी तरह जब किसी हरे भरे पौधे की तमाम पत्तियां तोड़ ली जाती हैं तो वो पौधा मुरझा जाता है और अगर नई पत्तियां जल्द ना निकलें तो वो पौधा मर भी जाता है। इसीलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप रात के वक्त पौधों के पास मत जाएं और इसके अलावा पौधे जो हैं उनको मत तोड़ें, क्योंकि पौधों के आराम का वक्त भी होता है रात के टाइम और इसके साथ साथ पौधे जो हैं वो हमें ऑक्सीजन भी फ्राहम करते हैं जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए अगर हम रोटी को रख दें तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सा कुछ आ जाता है या बाज़ुकात उसमें से स्मेल भी आती है, उसको फफूंदी कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि रोटी में फफूंदी क्यों लग जाती है? आज आपको बताते हैं कि रोटी में फफूंदी क्यों लगती है। फफूंदी एक तरह की खुंभ है और खुंभ बहुत सी इकसाम रखती है। इसमें से कुछ ऐसी होती हैं जिनको सांप की छतरी भी कहते हैं और ये बारिश के दिनों में खसूसन गर्ज चमक के बाद जमीन से निकलती हैं। ये नबातात की बिल्कुल इब्तदाई शक्ल होती है। इसका रंग दूसरे पौधों की तरह सबज नहीं होता क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये मुर्दा जानवर या गली सड़ी सब्जी से अपनी खुराक हासिल करती है और अपने नन्हे नन्हे बीज हवा में फैला देती है। ये बीज जब खुराक और पानी पाते हैं तो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गंदगी के ढेर पर एक छतरी नुमा छोटे छोटे से पौधे नजर आते हैं, वो भी फफूंदी की एक किस्म होते हैं। फफूंदी के बीज जो हवा के जरिए फैल जाते हैं, ये नन्हे नन्हे बीज रोटी पर घिरते हैं तो उन्हें बड़ी अच्छी खुराक मिल जाती है। रोटी के छोटे छोटे सुराखों में वो जम कर बैठ जाते हैं और बढ़ने लगते हैं। कुछ अरसे के बाद रोटी पर फफूंदी की तय मोटी होती जाती है और ये रोटी खाने के काबिल नहीं होती। फफूंदी की वजह से बहुत से जानवरों और पौधों को रोग लग जाते हैं, यानी कि वो बीमार हो जाते हैं, मगर इसका वजूद इसलिए जरूरी है कि वो हर किस्म की मुर्दा चीज को तोड़ फोड़ कर ऐसे मादों में तब्दील कर देती है जो दूसरे पौधों की खुराक बनते हैं। फफूंदी की एक किस्म से एक बड़ी ही हैरत अंगेज दवा तैयार की गई है, यानी दवाई तैयार की गई है जिसको पेंसिलिन का नाम दिया गया है और इसकी दरियाफ्त स्कॉटलैंड के एक साइंसदान सर अलेक्जेंडर ने 1929 में की थी। एक दिन वो एक बर्तन में जरासीम की नशोनुमा पर तजर्बा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इस बर्तन में फफूंदी लग गई है और जहां फफूंदी लगी है वहां तमाम जरासीम मर गए हैं। इस तहकीक को सामने रखकर उन्होंने पेंसिलिन तैयार की जो एक कामयाब जरासीम कुश दवा है और ये दवा जो है वो बुखार जब होता है तब इस्तेमाल की जाती है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक फफूंदी जिसको देखने को दिल नहीं करता, कैसे वो मेडिसिन बन जाती है और कैसे वो हमारे लिए फायदेमंद साबित होती है। तो कहते हैं ना कि खुदा ने कोई भी चीज कभी भी बेफायदा नहीं बनाई, और बिल्कुल इसके भी बहुत से फायदे हैं जो कि मैं पहले आपको बयान कर चुकी हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। जो भी आप सीखा उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप सुनिए ये नज़्म और अपनी मेजबान सना जॉर्ज को दीजिए इजाजत।
अबू सितारा कहाँ हो गुम, यही हो यही हो, कैसे हो तुम? लाल लाल सितारा, अमी सितारा कहाँ हो गुम, यही हो कैसे हो तुम? पीला पीला सितारा, भजा सितारा कहाँ हो गुम, यही हो कैसे हो तुम? हरा हरा सितारा, आपी सितारा कहाँ हो गुम, यही हो कैसे हो तुम? गुलाबी गुलाबी सितारा, छोटू सितारा कहाँ हो गुम, यही हो कैसे हो तुम? सफेद सफेद सितारा, अबू सितारा कहाँ हो गुम, यही हो कैसे हो तुम? लाल लाल सितारा, अमी सितारा कहाँ हो गुम, यही हो कैसे हो तुम? पीला पीला सितारा, भजन सितारा कहाँ हो गुम, यही हो कैसे हो तुम? हरा हरा सितारा, आपी सितारा कहाँ हो गुम, यही हो कैसे हो तुम? गुलाबी गुलाबी सितारा, छोटू सितारा कहाँ हो गुम, यही हो
करो।